ಗೋವಿಂದ ಹರಿಕಥಾ ಪಿಪಾಸು ಸತ್ಯದಿಂದ ಪರಂ ಸ್ನೇಹಶೀಲ ಮಾತೃದಿಂದ ಸಮೀಪೆ ಚರಣದಿಂದ ಯಥಾಯಥ ದಂಡವತ್ವ ನಾಮ ಸ್ವೀಕಾರವು. ಆಜ್ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ವ್ಯಾಸದೇವ ಜಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ ಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಕರ ಕೈ ದಿನ ಯಾವತ್ ಆಜ್ ಕೈ ದಿನ ಯಾವತ್ ಇಸ್ ಕಥಾ ಕೀರ್ತನ ಕರ್ತೀವಿ ಜಾ ರೇ ಬಂಗಾಲ ಕೈ ದಿನ ಯಾವತ್ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಬಾರೇ ತಥಾ ವ್ಯಾಸದೇವ ಜಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ ಪತಾಮರಿ ಕೀರ್ತನ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೆ ಆವಿರ್ಭಾವ ತಿಥಿ ಧೂಮಧಾಮ ಮನಾಯಾ तो वहां पर भी उनकी भी जीवन चरित कथा हमने कीर्तन वर्णन किया है. अभी दो शब्दों के द्वारा अपने वाणी को शुद्धिकरण करने के लिए आपने के निकट मैं प्रस्तुत करता हूं. अभी अभी आप लोगों ने श्रवण किया जो वास्तव दस शब्द की अर्थ क्या है और दसवीं की जीवन चरित जिन्होंने जगत में प्रकट होकर के चार वेद को प्रकाश किया हरीक श्याम जोजू अथर्व ये चार वेदों को उन्होंने प्रकाश किया किंतु तथापि लोग इसे समझ नहीं पाए. फिर उन्होंने क्योंकि वेदांत सूत्र की भी उन्होंने प्रकाश किया करीब सारे पंच जो है वेदांत सूत्र उन्होंने निर्णय करके दिखाया किंतु लोगों के समझना बहुत कठिन थे. फिर उसी को जो है और भी समझाने के लिए उन्होंने उपनिषद की भी प्रकट किया कितने 11,088 उन्होंने उपनिषद भी किया किंतु तथापि लोगों की समझ में नहीं आया. उन्होंने फिर किया कि पुराण
अरे कहीं
ना उन्हें
तो वाले आए हुए हैं सब लोग मास्क लगा रहे हैं क्या चल रही है
मास्क
कहा आप बोलो ना आप बोल रहे हो ये जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग मास्क लगा
सभी लोग मास्क पहन नहीं है नहीं तो आप लोग को सब 2,000 रुपया देना पड़ेगा सब हाँ फिर उन्होंने क्या की पुराणों की रचना की किंतु पुराणों रचना तो किया 17 पुराण तो उन्होंने रचना कर दिया किंतु तथापि लोगों को समझ में नहीं आया. फिर उसी की और भी स्थिर करने के लिए विचार को जो विषय वस्तु की प्रकट करने के लिए उन्होंने अंतिम लेटेस्ट पुराणम श्रीमद् भागवत में प्रकट कराया श्रीमद् भागवत यदि प्रकट नहीं होते ये वास्तव रूप में हमारे कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के बारे में हम लोग समझ नहीं पाते. ये श्रीमद् भागवत में कृष्ण प्रेम के बारे में संपूर्ण रूप से दिखाया जैसे प्रातः काल में हम लोग भी श्रवण कर रहा था ये बैठे सारे पुराण के लिए प्रकट करके उनके चित्त भी प्रसन्नता नहीं हुई. अंत में नारद जी की कृपा से उन्होंने भक्ति योग के द्वारा साक्षात रूप में पूर्ण पुरुष भगवान के दर्शन किया और पूर्ण पुरुष भगवान के दर्शन करके फिर कृष्ण के सारे लीलाओं को जो सुंदर रूप में वर्णन किया गया जिसमें स्पष्टीकरण कर दिया ये कृष्ण प्रेम सर्वोत्तम है. इस कृष्ण प्रेम की और भी पूर्ण करने के लिए उन्होंने भागवत में क्या लिखा गया ये राघव प्रेम गोपियों की प्रेम सर्वोत्तम दिखाया दस सख वात्सल्य और अपेक्षा मधुर प्रेम की वर्णन है उस मधुर प्रेम में भी सर्वोत्तम मूल्य दिखाया गया सकिया और परकिया की भी उन्होंने दिखाया गया और परकिया प्रेम देश में छोड़कर के अन्यत्र कहीं नहीं है. इसमें ब्रज प्रेम गोपियों की प्रेम के सर्वोत्तम दिखाया जिस कथा प्रसंग की श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट वर्णन किया गया है. देखो द्रौपदियों के जो प्रेम जो है ये सर्वोत्तम माना गया है। जहां पर कृष्ण वहां पर विवाह भी प्रकट करते हुए विकास किया रस विचार के अनुसार 96 प्रकार के नायक दिखाया गया। कितने प्रकार के 96 प्रकार के नायक वर्णन किया गया है और फिर 360 प्रकार के नायक भी वर्णन किए। क्योंकि ये सब विषय के यदि हम लोग अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, वास्तव रूप में श्रीमद् भागवत की रसमाधुर्य वो हम आस्वादन कर नहीं सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो श्लोक द्वितीय तृतीय श्लोक में जो वर्णन किया गया है, निगम कल्प तरुण बलित फलम सुप मुखादंत द्रव संगीतम पीवत भागवत रस मालन मूर रसिका विधि भागुका। ये श्रीमद् भागवत की रसमाधुर्य कौन आस्वादन कर सकते हैं? ये रसिक और भावुक जन है। इसलिए कहा भागवत परी कोई मरे और भागवत परी कोई करे। तो ये कैसे भागवत ऐसे अमल बनता है जिसमें गतिगत में वर्णन करें तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदीरितम कलम साहपंत तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदीरितम कलम साहपंत श्रवणमंगलम श्रीमदातम जहां पर गतिगीत में स्वयं राधा जी इस श्लोक कीर्तन की तब कथम मृतम स्वयं राधा जी कह रही है कृष्ण आपकी कथा जो अमृत स्वरूप है तब कथम मृतम तत्व जीवनम इस संसार के लोग आध्यात्मिक आदि गरीबी और आदि भौतिक प्रताप जाल के द्वारा दग्धी रूप हो गए। यदि इस कथा को श्रवण करें तो सब सारे जाला नष्ट हो जाए। ये तो तब कथा अमृत है। जिस प्रकार अमृत पान करने से शरीर पुष्ट हो जाता है, समस्त प्रकार के रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार कहते तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि ईतम ब्रह्मा आदि देवताल जिनकी कीर्तन आदि करते रहते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि ईतम कालमसा पहम समस्त कालमस यानी समस्त प्रकार के पाप अपने आप त्याग देता है, नष्ट हो जाता है। कालमसा पहम श्रवण मंगलम इसकी कथा श्रवण करने से समस्त प्रकार मंगल उदित हो जाता है। श्रवण मंगलम श्री मदागतम समस्त प्रकार के श्री मणि सुंदर के धाम संपत्ति अपनी प्राप्ति हो जाएगा श्री मदा आदत। और क्या हो गया भूमि वृंदते भूमिदा जना इस कथा को जो कीर्तन करते हुए वो सर्वश्रेष्ठ दाता माना जाता है। इस संसार में कपड़े दान वस्त्र दान अन्न दान अनेक प्रकार के दान की महिमा कहा गया, गो दान कन्या दान भी कहा गया, कन्यादान भी है उसी, किंतु सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? भगवत कथा को जो जगत में प्रचार करते हैं। यदि कहो ये भागवत पर भी कैसे मर जाते हैं, बोले भागवत के अर्थ भी नहीं समझे। भागवत गुरु प्रति अक्षर प्रति शब्द नाना अर्थ कौर भागवत भगवान उसे बृहद है, उसी प्रकार भागवत भी भगवत स्वरूप है। एक ही श्लोक में एक ही शब्द में अनेक अर्थ हो जाता है। सर्वभूताचार्य केवल एक ही श्लोक क्या सकता है वो एक ही श्लोक के उन्होंने क्या की 9 प्रकार के अर्थ बता दिए। आत्मा रामस्य मनः निर्दंत परिवृत्तम इस श्लोक के उन्होंने 9 प्रकार के अर्थ बताया और महाप्रभु उनके एक शब्द के प्रश्न नहीं करके 18 अर्थ बता दिए। और उसी श्लोक के चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद के निकट 64 प्रकार के अर्थ बताए। आप बताओ तो भागवत पढ़ना और भागवत समझना इस साधारण दुख नहीं। इसलिए कहते हैं कि गुरु के अनुगत्य में उपगुरु सदगुरु होनी चाहिए है? सदगुरु के अनुगत्य में जो कोई भागवत पढ़े वो भागवत की यथार्थ तात्पर्य को समझ सकते हैं, और नहीं तो अद्वैतवादी लोग पढ़ते नहीं है, कौर्मी ज्ञानी जो सभी पढ़ते हैं, सभी पढ़ करके क्या करते हैं, तो सब ब्रह्म बन जाता है। भागवत के अनेक श्लोक है जिसको वैश्विक कहा जाता है, बदम तो तद्गतम जग जन्माद्यम ब्रह्मे भी परमात्मा भी भगवान की गते, इसको वैश्विक कहा जाता है। इसके लिए रहस्य बहुत है, एक कथा बोलते जो अनेक प्रसंग हो जाता है। जब श्रीमान भागवत वैष्णव जी ने गणेश को बोले तुम भागवत लिखो, गणेश जी से क्या अभिमान हो गया, मैं क्या आपके क्लार्क हूं ये मैं लिखू, बोले ठीक है मैं लिखूंगा, जहां पर आप बंद कर देंगे वहां पर मेरा कलम भी बंद हो जाए। वैष्णव बोले ठीक है मेरा भी लिख सकते हैं, देखो मैं जो श्लोक बोलते जाऊंगा आप जब लिखते जाओगे यदि समझ करके नहीं लिखा तो एक बार तो तुम्हारे हाथ सीट उड़ गया, हाथी मस्तक मिले ना जिसको क्या बोलते हैं गजानन गज मैंने हस्ती है, हाथी के मुख मिला कि नहीं, किंतु देखो मैं जब बोलूंगा श्लोक उस श्लोक के अर्थ समझ करके तुम लिखो, बिना अर्थ समझ करके ऐसे लिख दिया तो तुम्हारे क्या दोबारा तुम्हारे क्या हो गया दूसरी बार क्या हो गया सील फूल जाए
नहीं होगा
और नहीं होगा भाई देखो हाँ बोले ठीक है। देखो वैष्णव ने डिक्टेशन देने लगे और बोलने लगे इसलिए बीच बीच में वैष्णव ने एक एक श्लोक बोलते हुए जिसको कहा जाता है क्या बोला वैष्णव कहा जाता है, जिसके अर्थ समझना बहुत बहुत कठिन है। जैसे इसमें बदन के तब्यत पूर्ण जब बनवा ब्रह्म ब्रह्मे की परमात्मा भगवान की सभ्यते, इसमें तो भागवत में ऐसे अनेक श्लोक है जिसको वैष्णव कहा जाता है। इसी श्लोक अनेक श्लोक समझ में नहीं आता, महाराज इसको समझ नहीं पाते, कर्मी ज्ञानी लोग समझ नहीं पाते, इसलिए कहा जाता है ये वास्तव में भागवत अध्ययन करना है तो किससे अध्ययन करे, रसिकार हुई भावु का रसिक जन के साथ बैठ करके भागवत अध्ययन करे, और वही रसिक जन की जोड़ता है चैतन्य महापुर के अनुरक्त में फिर रूप गोस्वी पार्टी उज्जवल उन्मणि भक्ति रसामृत सिंधु इसके यदि अध्ययन नहीं किया वास्तव रूप में श्रीमद भागवत की जो रसमाधुर्य आसादन नहीं कर सकते न उसके वास्तव रूप जान सकते हैं। इसलिए कहते हैं ये इसको समझना इतने सहज नहीं है। गुरुदेव कहते थे ये श्रीमद भागवत इन्हें पीएचडी के ग्रंथ है, बहुत उच्च स्तर के ग्रंथ है, फिर इसके ऊपर एक ग्रंथ है भागवत के ऊपर और एक ग्रंथ है इसको क्या ग्रंथ कहा जाता है चैतन्य चैतामृतम, ये अद्भुत ग्रंथ है। सारे वेद पुराण उपनिषद श्रीमद भागवत की यदि एकत्रित करके निष्कर्ष करके देखा जाए वो चैतन्य चैतामृतम है, उस चैतन्य चैतामृत ग्रंथों की अध्ययन करना समझना और भी कठिन है। इसलिए भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है जिसने वैष्णव ने ऐसे ग्रंथ प्रकट किया, इस ग्रंथ के वैष्णव ने प्रकट किया किंतु इसके किसको देंगे धन, जैसे पिता अपने उपयुक्त पुत्र के जैसे धन संपत्ति देकर के जाते हैं, यदि शराब पीने वाले बेटा के देकर के जाए तो उनके धन संपत्ति का बेकार हो जाएगा, शराब पी करके वह नष्ट कर देंगे, है कि नहीं है। आप ही विचार करें आपके पास बहुत धन है वो धन कैसे है ना, आप अपनी मेहनत करके प्राप्त है, जीवन में एक वस्तु आप याद रखिए अपने मेहनत करके जो वस्तु मिलता है और सत्यता के साथ अनिष्ट की ये याद रखिए, छल कपट के नहीं है, जो अपने मेहनत करके जो फल प्राप्त होता है और अत्यंत सत्यता के साथ अनिष्ट उसके फल कभी व्यर्थ नहीं होता है। पिता के रखकर के संपत्ति आप तो कुछ भी कर सकते हो किंतु अपने मेहनत करके परिश्रम करके जो फल प्राप्त होता है उसमें एक विषय वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो हम कह रहे हैं व्यासदेव ने देखो इतने कठोर तपस्या करके ऐसे जो धन को प्राप्त किया उस धन को किसको देकर के जाए। हाँ महाराज बोले अदो मिनट लेने कल समाप्त होती। देखो इसमें कह रहे हम इसमें हम नहीं कह रहे हमारे टीकाकार वर्णन कर रहे हैं जिसमें श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध में 29 अध्याय में राष्ट्रीय बंधन के प्रसंग में पहली श्लोक में जो कहते हैं क्या श्लोक बोला उवाच क्या उवाच बोले बागरानी उवाच। देखो उसमें लिखा है क्या लिखा गया बागरानी उवाच बागरानी शब्द के और बागरन से व्यासदेव के पुत्र होने के नाते सुखदेव के संग में कहा गया बागरानी समझ में आ रहे बागरानी उवाच। यहां पर हमारे टीकाकार पुस्तक सनातन दशमी पाद वर्णन करते हैं ये यहां पर बागरानी शब्द क्यों कहा गया सीधी लिखते थे सुपरवाच कहते भी सुपरवाच लिखा गया किंतु पाठांतर में स्पष्टीकरण क्या किया बागरानी उवाच। वहीं के टीकाकार लिखते हैं वे व्यासदेव गोस्वामी ने जो धन प्राप्त किया उस धन को किसको देकर के जाना चाहते हैं अपने तपोधन अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को आगे दे जा रहे हैं क्योंकि अपने अर्जित धन जो है जिसको किसको हाथ में देने से नष्ट कर देंगे इसलिए अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी पाद को धन के देकर के जा रहे हैं ये मैं ऐसे कठिन धन है और वही सुखदेव गोस्वामी के बाद आप लोगों ने श्रवण किया व्यासदेव के पुत्र सुखदेव के जन्म वृत्तांत आप लोगों ने श्रवण किया इसी कड़ी में दो शब्द मैं बताता हूं। देखो सुखदेव गोस्वामी का जन्म लिया मातृगर्भ से जन्म लेने के साथ ही साथ 16 साल के भांति सुंदर युवा पुरुष नंगे धड़ंगे और केश भी कैसे जटाजूट धारण है और उसमें वर्णन सुखदेव गोस्वामी के वर्णन है सुखदेव गोस्वामी पास जब जंगल के ओर जा रहे हैं कितनी सुंदर उनके वर्णन है कृष्ण वर्णन थे और उनके जो है नेत्र प्रातः काल में सूर्य उठने के पहले कमल के जैसे सदृश होता है और दो उन्मिलित शब्द कहा गया है और विश्व होते हुए बात चलते जा रहे जिसे सुखदेव गोस्वामी पास सुखदेव गोस्वामी पाद के प्रणाम मंत्र में जन कर जन्म प्रेतम दैन गृह का सोमकादि ऋषि के निकट कहने लगे हे ऋषि वर्ग सुनिए मेरे गुरु कोई सामान्य नहीं है मेरे गुरुदेव कैसे जन प्रजन तो मन तो अवैध कृतम मातृगर्भ से जन्म लेने के साथ ही साथ कहां जा रहे जंगल के ऊपर जा रहे बोले जिनकी दर्शन करने के साथ ही साथ क्या दूसरी की बात बताएं वो सुपक्षी वृक्ष लता भी प्रेम में उन्मत्त हो गए इसे बहुत सुंदर वृक्ष है इसे कहते हैं महाभागवत किसको कहा जाता है हम लोग जहां कहां महाभागवत की कथा प्रेम कर देते हैं किंतु महाभागवत किसको कहते हैं जहां दर्शन आयसे कृष्ण प्रेम कहा के जानिए तुम्हें वैष्णव प्रधान जिसको दर्शन करने के साथ ही साथ कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है प्रेम उत्पन्न हो गया कैसे समझेंगे एवं प्रणाम गुप्ता जटान राग दुखी उच्च हसती अदय रोधी गायन माधव नित्यति लोकवंश ये सब प्रमाण महाभागवत कैसे लक्षण करें इसे देखो सुखदेव गोस्वामी के दर्शन से सभी लोग प्रेम में उन्मत्त हो गए या तो ये वृक्ष आदि प्रेम में उन्मत्त होकर के उनके आंखों से आंसू अश्रु साथी विकार में लगा टिकाग्र वर्णन करें वे जन करूं तो उनको तो अपेत कृतम दैपान विरह कहा तो उनके पीछे पिताजी हा पुत्र करके रोदन करके दौड़ रहे किंतु सुखदेव गोस्वामी का एक बार भी पीछे घूम करके नहीं देखा और पतित दल आने लगे कश्य पुत्र कौन किसके पुत्र है महाभागवत के लक्षण बता दे जा रहे किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी महाभागवत तथा भी कैसे लीला कर रहे एक साधारण अद्वैतवादी की भांति लीला आदि करते जा रहे इसलिए व्यासदेव ने यही सुखदेव के जो अपने अर्जित धन प्रदान करने के लिए दो श्लोक के द्वारा उनके पकड़ने के लिए प्रयास की। साइंस समय बहुत संकेत है, बार बार करे किंतु वास्तविक आज हमने व्यासदेव जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। वास्तव देखो व्यासदेव कैसे अपने दो पुत्र के कैसे लेकर करा, तो दो श्लोक जो है भागवत के दो श्लोक के द्वारा सुखदेव गोस्वामी कहा कि जो है कैसे भागवत कथा श्रवण कराया। बड़ा पीड़ा ये दो श्लोक और अयोवती अनुष्ठान काल गुतम देखो कितने सुंदर है। और वही सुखदेव गोस्वामी पाद पुनः बैजन के निकट आकर के प्रणाम करके और सारे श्लोक सीखा। संत बैजन ने अपने कहा मैं अपने पिताजी के मुखारविंद से ये समझते मैंने कथा श्रवण किया। हे परीक्षित महाराज इसको मैं आपको सुना रहा हूं। तात्पर्य क्या है भागवत की कथा जो है हम कैसे श्रवण करेंगे? गुरु परंपरा प्राप्त वेदवाणी जो कथा है आमाय वक्त जहां कहा भागवत पढ़ लिया तो बताइए। इसे कहते हैं गुरु परंपरा प्राप्त वेदवाणी, गुरु परंपरा होनी चाहिए। जिसके गुरु को हम करेंगे उसके गुरु परंपरा क्या है हमें जानना चाहिए। एक गुरु परंपरा दो प्रकार की होती है, एक भागवत परंपरा और एक होता है क्या है, एक होता है शिष्य परंपरा। किंतु हम लोग गौरव संप्रदाय में महापुरुष विचार धारा में हम लोग साथ देखते हैं साथ भागवत परंपरा की विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे। भागवत परंपरा क्योंकि कहीं पर उपयुक्त शिष्य नहीं मिलता है, ये नहीं है उसके उसके गुरु और उसके शिष्य गोदी पर डर जाए, ऐसे नहीं होता है। इसमें शिष्य परंपरा अपेक्षा किसके ऊपर जोर दिया जाता है, भागवत परंपरा। यही हमारे भागवत परंपरा हम लोग दिखा रहे हैं। हम लोग गुरु परंपरा हम लोग प्रातः काल में जो कीर्तन करते हैं कृष्ण इंते चतुर्म हन कृष्ण सेवनम ब्रह्मा इंते नारदेर मति नारद होते वैस मध्य प्रयाण बसदास पूर्ण पुत्र पद्मनाभवती। ये पाक परंपरा को चलना चाहिए। अनेक परंपरा में गुरु तो है पुरुष के शिष्य उपयुक्त नहीं है। जैसा मैं उदाहरण देता हूं देखो भक्तिविनोद ठाकुर किससे दीक्षा ली, क्या नाम विपिन बिहारी से, किंतु भक्तिविनोद ठाकुर के गुरु के नाम उदय पर है नहीं है। अरे बहुत लोग हमें प्रश्न करते हैं, बहुत लोग इसके विचार पर करते हैं जो गौड़ी वैष्णव सरस्वती धारा में गुरु परंपरा है ही नहीं, विशेष करके बाद बालाजी संप्रदाय में इसके ऊपर जो है बहुत उंगली उठाते हैं। जिससे इसलिए गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज ऐसे सुंदर ग्रंथ जो है जगत में प्रकट किया है, उसके नाम है क्या ग्रंथ प्रबंध पंचकम। उसमें देखिए सारे बालाजी संप्रदाय के जो है विचार को भक्त कर दिया, उन्होंने पुष्टिकरण किया जो सरस्वती धारा में गुरु परंपरा किसको कहा जाता है। केवल गुरु लिया किंतु गुरु जी सब गुरु नहीं हो, विपिन बिहारी क्या नाम उसके नाम उनके विचार ठीक नहीं था। इसलिए देखो ये व्यक्ति विनोद ठाकुर हम जो गुरु परंपरा में उनके नाम नहीं होता अनेक जो है जो इसमें इसका विचार होनी चाहिए। सदगुरु किसको कहा जाता है, परंपरा किसको कहा जाता है, इसमें जो विचार जब तक हम ग्रहण नहीं करें किसको कहते हैं भागवत परंपरा किसको कहते हैं शिष्य परंपरा। दीक्षा भी उसी प्रकार भी होता है भागवत दीक्षा और होता है पंचरात्रि दीक्षा। इसमें उसका विचार करके हमारे आचार्य पाद में दिखा देखो हम इसमें कह दे रहे आज के दिन ही विष्णु गुरुदेव ये समस्त परंपरा के बारे में श्रवण कराते थे। क्यों हम गुरु परंपरा के सब श्रवण नहीं करें जहां तक दीक्षा ले लें और एक बार गुरु तक जैसे फिर दूसरी गुरु महाभागवत सुंदर फेसबुक में लिख दो जो वहां पर एक महाभागवत प्रकट हो गया दौड़ना शुरू कर देता है। तब कुछ दिन के बाद देखा तो महाभागवत नहीं है, फिर दूसरे से गुरु छुटने लगे, फिर दूसरे गुरु से दीक्षा ले लेता है, ऐसे सारा जीवन से चले जाता है। मैं तो स्पष्टीकरण कर देता हूं कि विदेशी में जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे नहीं है हमारा परंपरा कि अच्छी तरह से दिखो गुरु सदगुरु जो है उसके पैर दिन के विधि नहीं कहा गया ये नहीं है। एक बार उससे दीक्षा लिया फिर उसमें चले जाते तो उनका बीज तुम्हारे पास उधर अंकुरित होगा। आप विचार करके देखिए इसका विचार होनी चाहिए। आज वैष्णव के जो गुरु परंपरा के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं किंतु ये होती है अवश्य ही हमको जानना चाहिए ये गुरु कोई साधारण नहीं होता है, है? गुरु क्या कहते स्वयं गुरुदेव भी कहते थे, कहते थे भजन साधन करके है? अपने एक गुरुदेव की कृपा से वो अनुभव करते हैं और वो अनुभव की वस्तु अपने युग शिष्य के हृदय में प्रकट कराते हैं। भागवत ने उसको स्वस्पष्टीकरण कर दिया, सिद्ध से शिष्य से गुरु क्या कहते सिद्ध निर्मल चरित्र बांग चरित्रवान शिष्य उनके हृदय में सारे अपने धन को दे देते हैं। यदि शिष्य गिर चरित्रवान नहीं हो और युद्ध नहीं हो तो वहां पर बीज देने से क्या होता है, अंकुरित नहीं होता है। यदि आप बीज को यदि पहाड़ के ऊपर पत्थर के ऊपर फेंक दिया जाए क्या अंकुरित होगा, और अंकुरित हो तो सूख जाएगा। बीज के वपन के लिए क्या करना चाहिए, बीज के बोने के लिए क्या करना चाहिए, फर्टिलाइज करके करना पड़ेगा है। इसलिए गुरु के कर्तव्य क्या है, शिष्य के हृदय में जो अनर्थ जो है उसको ध्वंस करना, जैसे अभी अभी बता रहे थे है। वास्तव में गुरु के कर्तव्य है, गुरु के कर्तव्य कैसे है, शिष्य के हृदय को निर्मल कराना है। ये कैसे जो हरिकथा श्रवण के द्वारा, जब तक हरिकथा श्रवण नहीं करे तस्वीर निकाले ना तस्वीर कभी शिष्य के मंगल नहीं हो सकता है। इसमें विश्वनाथ चतुर्वेदी का स्पष्टीकरण करते हैं, आदि गुरु मुखात हरि कथा श्रवणम, गुरुदेव के मुखात में हरि कथा श्रवण करो। ओ वीरजवदी कथा है, इसमें शक्ति है, ओ वीरजवदी कथा तुम्हारे कान के माध्यम से जाकर के हृदय में आकर के क्या हृदय में तुम्हें अनर्थ के नाश कर देंगे। सिंह कांग से कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, भागवत में बहुत श्लोक है, श्लोक बोलते जाते श्लोक के जारी हो जाएगा क्योंकि वास्तव में सत्य है। इसलिए कहते हैं गुरु मिले लाख लाख शिष्य मिला भाग, और शिष्य मिले लाख लाख गुरु मिला भाग, ये बात कर सकता है। हमारे गुरुदेव किस कथा बोलते हैं, गुरु वो भाव संति शिष्य वित्तप हारता, सदगुरु दुर्लभ देवी शिष्य संताप हारता। साई सिद्धि देवी पार्वती के कहने लगे, देवी पार्वती सुनो, इस जगत में बहुत गुरु है, शिष्य केवल अर्थ संग्रह कर लेते हैं, पैसा चाहिए पैसा चाहिए, अर्थ की क्या करें, अर्थ अनर्थ नहीं है। इसे गुरु भाव संति शिष्य वित्त पहारता, शिष्य के वित्त धन के द्वारा प्रदान करते हैं और अपने आनंद से मौज में रहते हैं, नागिनी कैसे कैसे है। वो सदगुरु नहीं, सदगुरु किस प्रकार से शिष्य के हृदय में जो संताप दुख कष्ट पिताप जल जो क्या करते हैं वो नाश करते हैं, कैसे हरिकथा के द्वारा, हरिकथा नहीं श्रवण किया तो कैसे आपको तो बताइए, केवल मंत्र लेकर के चले गए एक साल बाद लौट करके आ गए और गुरु के सलाहना दे दिया, सलाहना समझते हो, एक साल के बाद कुछ पैसे इकट्ठा कर ले, बहुत जगह में ऐसे भांडे रख देते हैं, बोले साल भर एक एक हर रोज एक एक करके जमा करना और फिर साल में जब इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास भेज देना, बस सारे तुम्हारे हो जाएगा, पासवर्ड देता हूं मैं तुम्हें, दो बैकुंठ के जाने के पासवर्ड दे देता हूं। अरे पासवर्ड जानते हो, पासवर्ड तुम्हारा सीज हो जाएगा, पासवर्ड बैकुंठ का पासवर्ड देते हैं, तो ये सब शब्द होता है क्या, हम इसको मानते नहीं है। पैसा देने के लिए पासवर्ड मिल जाए, बैकुंठ के पासवर्ड इस जगत में पैसा देने से पासवर्ड मिल जाएगा, ये बात सत्य है, फर्जी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। बैकुंठ जाने के लिए फर्जी पासवर्ड में आप जाओ जाओगे, आप बताओ, ये अपशब्द है, ये सब शब्द नहीं है। वह हमें पास पैसा दे दो, अरे इतने के टाटा जी में कितने धनवान व्यक्ति लाखों करोड़ रुपए लेते पैसे पैसा लेके बैठे हुए हैं, कितने राजनेता जिसके पास उतना अथा पैसा हुआ रखने की जगह नहीं है, स्विस बैंक भी उसके पास भी कुछ नहीं रहा, तो उसके वो भी पैसा दूसरे बैकुंठ में चले जाएंगे, आप बताओ। इसलिए संस्कृत है बात सत्य नहीं, इसलिए समझना चाहिए हरि कथा श्रवण, गुरुदेव जी के गुरुदेव के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण के द्वारा ही आपके चित्त निर्माण हो सकता है। और मैं दुष्ट का प्रकाश किया किंतु जो सत्य मैं बोलता हूं है अर्थ के लिए मैं भी कहती हूं, पादे अर्थ आ जाएगा, जितना तुम्हारे भाग में है वो आ जाएगा। हां इसलिए धन अपहरण करने की जरूरत नहीं है, हाँ इसलिए धन अपहरण करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या करो हरि कथा बोलो, دن رات 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے ہری کتھا بولو تو ہری کتھا سنا سکتے اور ہری پرساد گرہن کرو. میں کیا کہتا ہوں پرساد لیجیے پرساد کھائیے اور ہری کتھا سبن کیجیے. ہری کتھا پرساد پرساد ہری کتھا میں ودیش میں جاتا ہوں ہری کتھا میں دیتا ہوں سچ مہا پرساد اور ہری کتھا ہری کتھا مہا پرساد مہا پرساد ہری کتھا یہ دونوں بہت شکتیشالی ہے. یہ مہا پرساد بھی سادھارن وستو نہیں ہے. مہا پرساد گرہن کرو اور ہری کتھا سیون کرو. برندارن یاری لال کی جی جی مہاراج کی جی سکھ دیو گنی پاد کی جی گرو ورگ کی جی جی